તારીખ 4/9/1988 પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 424 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 338
સ્વરૂપ કૈસા કૈસા હૈ પ્રશ્ન કરતા
હૈ
નિશ્ચય સે મેને વાસ્તવ સે अशुद्धता ग्रह के थोड़े भाग में भी नहीं आई है, किसी भी भाग में थोड़े मैंने किसी भी भाग में द्रव के किसी भाग में तो नहीं आई है। वह तो पर्याय में भी वहाँ इतना लेना ऊपर ऊपर ही तिरती है, तो पर्याय में भी ऊपर ऊपर तिरती है, पर्याय में भी तीर्थी है। जैसे पानी की ऊपर की सपाटी है, सरफेस जिसको कहते हैं, वहाँ तेल तीरता है, पूरे भाग में तो नहीं तीरता, वो भी कुछ एक भाग में तीरता है। वहाँ तो क्षेत्र का दृष्टांत लिया है, यहाँ क्षेत्र नहीं लेना है, यहाँ भाव लेना है। जो ज्ञान भाव है उसमें तो राधा जी मलिनता का प्रवेश नहीं है, ज्ञान है तो ज्ञान रूप है, ज्ञान में तो राधा जी का प्रवेश नहीं है। और दूसरे भी ऐसे बहुत से गुण हैं जो शुद्धि परिणमते हैं, चारित्र में, श्रद्धा में, सुख में, विप्रयास होते ही मलिन परिणाम अशुद्ध परिणाम लग जाते हैं। तो ऊपर ऊपर तीरती है, इसका एक दूसरा मतलब है इस पद्धति से कहने का कि ऐसा कौन कहता है। पहले तो ज्ञानी को तो अज्ञानी को तो ऐसा लगता है कि मैं पूरा विकारी हो गया हूँ, क्रोध होने से उसको ऐसा अनुभव होता है कि मैं पूरा का पूरा अभी क्रोधी हूँ, राग होने से उसको ये महसूस होता है कि मैं पूरा का पूरा रागी हूँ, तो वो तो नहीं बोल सकता या वो तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो अनुभवता नहीं है कि वो अशुद्धता ऊपर ऊपर तीरती है। उसको तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे में प्रवेश हो गया है, मैं पूरा का पूरा रागी हो गया हूँ, मैं पूरा का पूरा संसारी हो गया हूँ। तो संसार अवस्था में क्या मानता है, मैं पूरा का पूरा संसारी हूँ। ये सब बातें तो कोई योगी महात्माओं की, परमात्माओं की होगी, मैं तो रहा संसारी पूरा का पूरा, ऐसा समझकर उसको वो अपने एक अंश को भी पूरा का पूरा, एक अंश में अपने को पूरा का पूरा अनुभव करता है। वैसा नहीं होने से, वास्तव में ऐसा नहीं होने से उस अनुभव को मिथ्या अनुभव बतलाया। ज्ञानियों ने, शास्त्रकारों ने उसको मिथ्या अनुभव कहा। लेकिन जो ज्ञानी है उनको ये पता चलता है कि ये मेरा द्रव गुण शुद्ध, मेरी अवस्थाएं भी शुद्ध, कुछ एक अंश में अवस्था में जो रागादि मलिनता है वो बहुत क्षुद्र है, तुच्छ है, और मैं उसमें हूँ नहीं, मेरा अस्तित्व उसमें है नहीं, तो ये कोई मैं हल्की सी चीज है, ऊपर ऊपर है, छूट जाएगी, जो मेरे साथ मिलकर एक नहीं हो सकती, अलग ही अलग रहती है। रागादि मलिनता होने पर भी मेरे आत्मस्वरूप से अलग ही अलग रहती है। अलग रहती है मतलब जहाँ मैं हूँ वहाँ वो नहीं है। जैसे कोई घनिष्ठ संबंध वाला संबंधी हो और कुछ विचार भेद होने से दूर चलने लगे, तो क्षेत्र से नजदीक बात कर खड़े खड़े, नजदीक खड़े खड़े बात करें, लेकिन इसका जो बातचीत करने का ढंग है, इसका टोन है, और कुछ ऐसे इनके जो बर्ताव हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये अपने आप को दूर महसूस कर रहा है या दूर दूर चल रहा है। कैसे दूर चल रहा है? पास में तो खड़ा है, पास में बात करते हुए अपन कैसे कहते हैं भाव में, ये दूर चल रहा है, आपस में थोड़ी दूरी हो गई है, ऐसा महसूस करते हैं। तो वहाँ अपनत्व था, वो अपनत्व नहीं लग रहा है आपस में, और विश्वास से एक दूसरे को देखते नहीं। वैसे ज्ञानी के परिणाम में रागांश होने पर भी वो मेरा है ऐसा विश्वास नहीं करता, अपने स्वरूप में अपनत्व करते हुए ज्ञानी रागादि को एक दूरवर्ती परिणाम, निकटवर्ती परिणाम नहीं जानते, समीपवर्ती परिणाम नहीं जानते, दूरवर्ती परिणाम जानते हैं। क्यों? कि स्वयं ने मुख फेर लिया है, यही कारण है कि उसको ठीक नहीं जान करके, उसका साथ नहीं निभाना चाहिए ऐसा जान करके, उसका विश्वास नहीं रख करके, विश्वास इसलिए नहीं कि वो अपने हित के कारण नहीं है, हित रूप नहीं है, दुख रूप है, ऐसा जान करके उसने ज्ञानी ने मुख फेर लिया है, उदास है इनके प्रति। पहले रागादि भावों की अपेक्षा रखता था जी, ये अच्छा होता है, ठीक होता है, ये राग तो बड़ा अच्छा है, ये राग, ये व्रत का राग तो प्रतिपालन करने जैसा है, उसका तो प्रतिपालन करे, प्रतिपालन करे मैंने पुष्ट करे, पालन कर करके पुष्ट करें, तो ये अभिप्राय बदल गया सारा का सारा। और अपने शुद्धात्म स्वरूप का स्वयं के रूप में अनुभव करने लगे, ऐसे ज्ञानियों को ऐसा लगता है कि रागादि अंश है थोड़ा ऊपर ऊपर तीरता है, अवस्था में भी ऊपर ऊपर तैरता है, मेरे साथ एक घुल मिलकर एक नहीं हो रहा है, वो दूर सा दूर रहता है, मैं भी इससे दूर रहता हूँ, और आगे जाके वो निर्बल हो रहे हैं, आगे जाके खत्म हो ही जाएंगे, अभी उसमें कुछ बल नहीं है, निर्बल होते होते वो खत्म हो जाएंगे। पूरी पर्याय अशुद्ध नहीं है, पूरी की पूरी अशुद्ध नहीं हो गई है, कुछ एक अंश में अशुद्धता है, वो भी ऊपर ऊपर है, वो कोई घुल मिल कर एक हो गई है, अब क्या करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गेहूं में कंकर होते हैं, बाजार में चलाते हैं, ये माटी के जो कण हैं, ये गेहूं रूप हुए नहीं, गेहूं जो माटी रूप हुए हैं उसको अलग कर सकते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो वैसे वो है, मामूली है, थोड़े बहुत निकाल सकते हैं, वैसे रागादि कुछ अंश में हो रहे हैं, हमारा अस्तित्व उसमें नहीं है, ये मेरे हैं ऐसा स्वामित्व उस पर नहीं रखते, और उसमें ज्ञानी रस नहीं लेते, ज्ञानी को रागादि भाव में रस नहीं आता, इसलिए उनसे वो उदास हैं, उपेक्षित रहते हैं, तो ये रागादि वंश है वो निर्बल होकर करके खत्म हो जाएगा, ऐसा उसमें भाव है कि ये मलिनता ऊपर ऊपर ही तैरती है, इसमें ऐसा भाव है, इस अभिप्राय से वो बात कही। वास्तव में यदि द्रव्य के थोड़े भी भाग में अशुद्धता आए, अब तर्क करते हैं, तर्क से कहें कि अगर थोड़े भी भाग में वास्तविक रूप से अगर अशुद्धता आ जाती, अर्थात द्रव्य का थोड़ा भी भाग अशुद्ध हो जाए तो अशुद्धता कभी निकलेगी ही नहीं, सदाकाल रहेगी, फिर तो ये द्रव्य तो त्रिकाल है, तो त्रिकाल वो थोड़ा अंश में अशुद्ध, थोड़ा अंश में सिद्ध, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि इनका स्वरूप ही त्रिकाल है, जैसा रहेगा जैसा होगा वैसा त्रिकाल ही रहेगा। तो थोड़े अंश में अगर वो शुद्ध हुआ या है तो हमेशा के लिए वो ऐसा ही होगा, इसलिए वहाँ से अशुद्धता मिटेगी नहीं। अशुद्धता नहीं मिटने से किसी आत्मा को परिपूर्ण सिद्ध परमात्मा पद प्रकट होवे ऐसा कभी बने नहीं। लेकिन जितने भी अनंत सिद्ध हुए हैं, सिद्ध तो अनंत हुए, जितने भी अनंत हुए हैं वे सब पहले व्यक्तिगत रूप से संसारी ही थे। जैसे दूसरे संसारी प्राणी चार गति में परिभ्रमण करते हैं वैसे ही वे थे। एक भी सिद्ध जीव, सिद्ध परमात्मा ऐसा नहीं कि वो अनादि से परमात्मा परमेश्वर पद में है, ऐसा एक भी नहीं है, सभी की आदि हुई है। सिद्ध पद सादि अनंत होता है, अनादि अनंत किसी का होता नहीं, ये परिस्थिति है। तो किसी अपना या कोई जीव का, किसी भी आत्मा का द्रव अशुद्ध हो जाता, कुछ अंश में भी अशुद्ध हो जाता तो उसको सिद्ध पद प्राप्त नहीं होता, लेकिन ऐसा कभी बनता नहीं। और ज्ञानी स्वानुभवी जीव को तो ये अनुभव के साथ प्रतीत आता है कि मेरा द्रव परिपूर्ण शुद्ध है और मेरी अवस्था अल्पकाल में परिपूर्ण शुद्ध होकर मैं परमात्मा बन जाऊंगा, मेरा बहुत निकट भविष्य में परमात्मा पद सिक्योर है, कोई शंका की इसमें गुंजाइश नहीं है, ऐसा उनको प्रतीत वर्तती है। द्रव की भी प्रतीत वर्तती है और अपनी निकट भविष्यवर्ती परिपूर्ण शुद्ध पर्याय की भी प्रतीत उनको वर्तती ही है। किसी को नहीं वर्ते ऐसा एक ज्ञानी भी होता, सबों को वर्तती है, ये ज्ञानी की ज्ञान दशा की प्रतीति की परिस्थिति है। इसलिए कहते हैं कि अशुद्धता द्रव में आ जावे तो निकले ही नहीं, सदा काल रहे। बद्धस पृष्ठत्व आदि भाव, बद्ध मैंने कर्म का बंधन, ऐसी योग्यता जीव की जिसमें कर्म का बंधन होवे उसको बद्धत्व कहते हैं। और पृष्ठत्व मैंने स्पर्शन करना, उज्ज्वल परमाणु के साथ स्पर्शना होना मैंने संजोग होना, या रागादि के साथ संजोग होना, ऐसा बद्ध स्पृष्टत्व आदि मैंने सभी प्रकार के विकारी परिणाम, मैंने वो अनियत परिणाम है और संयोगी परिणाम है, ऐसे सब प्रकार के पांच प्रभाव लिए ना, ये पांचों पांच ले लेने, भंग भेद रूप है, वैसे सब बद्ध स्पृष्टत्व आदि भाव द्रव के ऊपर तैरते हैं परंतु उसमें सचमुच स्थान नहीं पाते। ये समयसार जी परमागम है, इसका एक कलश है, उस कलश में आचार्य देव अमृतचंद्र भगवान ने ये बात कही है कि ये तो सब ऊपर ऊपर तैरते हैं, ऊपरी तरंते, ऐसा शब्द है संस्कृत, रागादि परिणाम है, अशुद्ध परिणाम है, ऊपरी तरंते, वो तो ऊपर ऊपर तैरते हैं, क्योंकि यही कलश पे ये प्रवचन चलता होगा मंदिरों में, तो उसका कुछ अंश है ना दे लिया है कि बद्ध स्पृष्टत्व आदि भाव द्रव के ऊपर तैरते हैं उसमें सतमुख स्थान नहीं पाते। वो 14-15 गाथा है, उसके आसपास के कलश होगा। चौदह गाथा के बाद में ग्यारह नंबर का कलश नहीं विदधति बद्धस पृष्ठभावादयोमी स्फुटम उपरी तरंतो। स्फुटम स्पष्ट रूप से क्या अनुभव करते हैं ज्ञानी के स्पष्ट रूप से स्फुटम उपरी तरंते अपि यत्र प्रतिष्ठान अनुभवते तमेव द्योतमानं समन्ता जगत अवगत मोहि भूय सम्यक स्वभावम्। जगत के प्राणियों को जगत के हो जगत के प्राणियों आप सभी सम्यक स्वभाव के अनुभव करो। आचार्य महाराज सभी जगत के जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं। कितनी विशाल भावना है, सिर्फ जैनी है वही अनुभव करो, अन्य मति जो विरोध करते हैं वो अनुभव नहीं करो, ऐसा नहीं लिया। अरे त्रियंच हैं, विराधना करके निगोलादि में गए, बहुत विराधना की, वो आत्मा का अनुभव कभी नहीं करो, ऐसी बात नहीं है। जगत ले लिया, जगत तीन शब्द में सब अनंत अनंत जीव को समाविष्ट कर दिया, तीन अक्षर है वो जगत, सभी प्राणी उसमें आगे। ओहो जगत के प्राणी सम्यक स्वभाव के अनुभव करो कि जहां यह बद्ध स्पृष्ट आदि भाव स्पष्टपणे स्पष्ट रूप से स्वभाव के ऊपर तीरते हैं। ये स्फुटम उपरी तरंत अपि बद्ध स्पृष्ट बंद रहित बंद के पर के स्पर्श रहित, दूसरे संयोग का स्पर्श नहीं है, कर्म का बंध नहीं है, अन्य अन्य पड़ा नहीं है, अनन्य है आत्मा अपने स्वरूप से, चला चलता जिसमें नहीं है, गुण के भेद नहीं है और रागादि का संयोग जिसमें नहीं है, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के विरुद्ध भाव जैसे हैं, ऐसे भाव जिसमें ऊपर ऊपर तैरते हैं फिर भी आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं पाते, नहीं पाते आत्म स्वरूप में उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, इसकी प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठा रूढ़िवाचक अर्थ में शोभा कहते हैं, इज्जत, इज्जत को प्रतिष्ठा कहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बात रूढ़िवाचक बात नहीं है। प्रतिष्ठा मैंने अच्छी तरह स्थापना होना, अच्छी तरह स्थापना होने को प्रतिष्ठा कहते हैं। जैसे भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं तो स्थापना अच्छी तरह करते हैं, स्थान पाते, बहुमान मैंने सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थान पाने को प्रतिष्ठा कहते हैं। तो ये रागादि भाव जो है वो आत्मा जो कि परमात्मा स्वरूप है, मूल स्वरूप से परमात्मा स्वरूप है, उसमें रागादि भावों का मलिन भावों का कोई स्थान ही नहीं, ऐसा समझो। ऐसा कहें ना कि भाई हमारे समाज में इस आदमी का कोई स्थान नहीं, कोई स्टेटस नहीं, उसका कोई इज्जत नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, क्यों? कि बहुत मामूली है, उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। ऐसे रागादि भावों का आत्मा में कोई स्थान नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं पाता, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य ही है, एक रूप है, और यह सब भाव अनित्य हैं, अनेक रूप हैं, पर्यायों द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करते, ऊपर ही रहते हैं, पर्यायी सब ऊपर रहती है, पर्याय का भी लेवल ऊपर गिनाया है, क्योंकि वो भी विलीन होती है, जैसे पानी के तरंग होते हैं समुद्र में, तो वो स्थिर दल रूप जो समुद्र है गहरा पानी, जहाँ कोई प्रवाह नहीं, हलचल नहीं, स्थिर दल है, उससे वो ऊपर ऊपर वाले जो तरंग हैं उसका स्थान ऊपर है, वो विचलित होते हैं, एक सा नहीं रहते, और पानी का जो दल है वो एक सा रहता है। पर्यायों द्रव्य स्वभाव में प्रवेश करता नहीं, ऊपर ही रहते हैं, यह शुद्ध स्वभाव सर्वावस्थाओं में प्रकाशमान है, क्या कहते हैं? यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है, तो ये कहेंगे आचार्य महाराज को कि महाराज हमारे संसार अवस्था में यह शुद्ध स्वभाव कहाँ प्रकाशमान है, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? है प्रकाशमान है, समन्तात् द्योतमानम्, ऐसा शब्द पड़ा है, समन्तात् द्योतमानम्, सभी अवस्थाओं में प्रकाशमान है, सर्व अवस्था निमिषे न्यारो सदा जनाय प्रगट रूप चैतन्यमय ए एंधान सदाय। एंधान समझते हैं? एंधान मैंने चिन्ह, सिग्निफिकेंस जिसको कहते हैं, जहाँ से वो पता चलता हो, पता चल जाए कि ये चैतन्य स्वभावी आत्मा ऐसा है। तो आत्मा एक चैतन्य स्वरूपी द्रव होने से उसकी चैतन्यता कभी छिपी नहीं रहती। अगर चैतन्यता पूरी ही पूरी आच्छादित हो जाए, आवृत हो जाए, तो उसको जड़ कहना पड़े या जड़ सदृश हो जाए, जड़ रूप हो जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। इसलिए शास्त्र में ये बात इस तरह प्रसिद्ध है कि जीव निगोद में जाता है, वहाँ भी उसका ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग में खुला रहता है। ज्ञान खुला रहता है, मैंने चैतन्यपना उसका खुला रहता है, जाना जाता है कि ये चैतन्य स्वभावी कोई आत्मा है, जीव है, ऐसा जाना जाता है। ये बात है, आया कि नहीं आया? ध्यान से पढ़े तो शास्त्र में ये बात जगह जगह पर है, जगह जगह पर है। ऐसा 49 का था, टीका में भी है, ये पढ़ना। स्वयं के अनुभव में आने वाला चेतना गुण द्वारा, क्या कहें? स्वयं के अनुभव में आने वाला, अनुभव में आने वाला अनुभव पर्याय है। स्वयं के अनुभव में आने वाला चेतना गुण, चेतना स्वभाव, उसके द्वारा सदा सम्यक्त्व के बाद नहीं, चतुर्थ गुण स्थान के बाद नहीं, सदा अंतरंग में प्रकाशमान है, इसलिए जीव चेतना गुण वाला है। अगर ऐसा नहीं होता, सर्व अवस्थाओं के विषय, मैंने सर्व अवस्थाओं में विषय, मैंने सप्तमी विभक्ति और उससे न्यारा, मैंने अवस्था रूप नहीं, न द्रव रूप, न गुण रूप, न अवस्था रूप, किसी एक भेद रूप ये सामान्य स्वभाव हुए तो उसका सामान्यपना रहता नहीं, विशेष हो जाता, यही बात है। इसलिए वो द्रव गुण पर्याय में जैसा है वैसा है, इसलिए वो राजमल जी कहते हैं कलष्टिका में कि जैसा है वैसा है, वो जैसा है वैसा है, मैंने किसी भेद उसको लागू नहीं होते, इसलिए उसको निर्भेद कहने में आते हैं, भेद रहित कहने में आते हैं, वो सदा ही प्रकाशमान है, समन्तात् द्योतमानम्। यह शुद्ध स्वभाव सर्वावस्थाओं में प्रकाशमान है, ऐसा शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर के, बस यही कारण है, दर्शन मोह से छुट करके, दर्शन मोह का त्याग करके, उसको क्षमा करके, नाश करके, हे जगत के सभी जीव, आप सभी इसका अनुभव करो, क्योंकि मोह कर्म का उद्देश्य उत्पन्न मिथ्या स्वरूप अज्ञान जहाँ जब तक रहता है वहां तक उसका यथार्थ अनुभव नहीं होता, वो यथार्थ रूप से अनुभव में जैसा है वैसा अनुभव गोचर नहीं होता, या तो अनुभव में आता है फिर भी ध्यान जाता नहीं है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अव्वाल गोपाल को अनुभव में आने पर भी वो अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसा ही उसको लगता है। और उसको लगता है कि मुझे तो कर्म का अनुभव हो रहा है, राग का अनुभव हो रहा है, शरीर का अनुभव हो रहा है, असाता का अनुभव हो रहा है, साता का अनुभव हो रहा है, ठंडी का अनुभव हो रहा है, गर्मी का अनुभव हो रहा है, ऐसा ही पुद्गल का अनुभव करता है, चैतन्य स्वभाव का अनुभव नहीं करता है। तात्पर्य यह है कि शुद्ध में के विषयभूत जो शुद्धात्मा है, शुद्ध स्वभाव है, उसका सम्यक अनुभव करो। जगत में ने सर्व जीव राशि निश्चय से पूर्वोक्त शुद्ध जीव वस्तु को जैसी है वैसी, क्या कहने की पद्धति है, सम्यक, सम्यक का अर्थ ऐसा कहा, सम्यक मैंने जैसी है वैसी प्रत्यक्ष रूप से स्वसंवेदन स्वसंवेदन रूप आस्वादन करो, अनुभव करो, इसका यह अर्थ है। सम्यक पणे प्रत्यक्ष पणे स्वसंवेदन रूप आस्वादन करो। कैसा हो करके आस्वादन करो कि टल गया है, विनाश हो गया है शरीर आदि परद्रव्य साथ एकत्व बुद्धि जिसकी, ऐसा हो करके राग और शरीर से एकत्व बुद्धि जो हुए उसका नाश करके जो अपगत हुई हुई, ऐसा होकर के अनुभव करो, क्योंकि मोह भाव से उसका अनुभव निर्मोही तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। भावार्थ ऐसा है कि संसारी जीव को संसार में बसते बसते अनंत काल गया, संसारी जीव को संसार में रहते हुए अनंत काल बीता, शरीर आदि परद्रव स्वभाव था, परंतु इस जीव ने स्वयं का जानकर प्रवर्तन किया। शरीर जड़ है, स्वयं आत्मा खुद चैतन्य स्वरूप है, लेकिन शरीर रूप अपने को जाना माना और प्रवर्तन किया कि मैं शरीर से खा सकता हूं। प्रश्न चला था ना कल, क्या करें, जीवन जीने में धन की तो जरूरत पड़ती है, तो ये शरीर निर्वाह के लिए बात है, आत्मा के निर्वाह के लिए वो बात नहीं है। लेकिन ऐसा मान रखा है कि इसके बिना चलेगा नहीं, मान रखा है। ये तिरियंज है, जंगल में रहते हैं, क्या उन जीवों के पास कोई बैंक बैलेंस रहता है क्या?
नहीं है।
खरगोश है, कितना बैंक बैलेंस होगा? अच्छा, वो बीमार हो जाए तो डॉक्टर की व्यवस्था है क्या? कोई दवाखाना पर वो जाता है दवाई लेने को क्या? बस वो सब अपने पूर्व कर्म से जीते हैं, जहाँ तक आयु है, जहाँ तक साता का उदय है, असाता का उदय है, बस वहाँ तक शरीर की वैसी अवस्था पूर्व कर्मों के अनुसार रहने वाली है। उसमें पैसा, दवाई, परिवार कुछ सुधार कर सकें या कुछ दर्द ले सकें या कोई वेदना को कम कर सकें, ऐसी वस्तु व्यवस्था कहीं नहीं है। कहते हैं शरीर आदि परद्रव्य स्वभाव था, परंतु इस जीव ने अपने अपने आप को ऐसा जानकर प्रवर्तन किया कि ये मैं शरीर रूप ही हूँ। शरीर दुबला है तो मैं दुबला है, शरीर का वजन बढ़ा तो मैं बढ़ गया, शरीर का वजन घट गया तो मैं घट गया, शरीर का दिखाव अच्छा तो मैं सुरूप हूँ, शरीर का दिखाव अच्छा नहीं तो मैं कुरूप हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ, मैं ऐसा हूँ, बस यही शरीर रूप ही अपने आप को अनुभव करता है। जब ऐसी विपरीत बुद्धि छूटती है, ये विपरीत बुद्धि है, जब ऐसी विपरीत बुद्धि छूटे तब ही यह जीव शुद्ध स्वरूप अनुभवने के योग्य होता है। विपरीत बुद्धि से स्वयं स्वयं के स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता, ऐसी विपरीत बुद्धि छूटती है तब ही वह अपने मूल स्वरूप का, चैतन्य स्वरूप का, शुद्ध स्वभाव का अनुभव करने के लायक होता है। इसके पहले अनुभव की क्षमता अवस्था में होती नहीं है। कैसा है शुद्ध स्वरूप? के समन्तात् द्योतमानम्, सर्व प्रकार से प्रकाशमान है, मैंने छिपाई नहीं हुआ है। क्या कहते हैं? ये तो सर्व प्रकार से प्रकाशमान ही हो रहा है। देखिए क्या अर्थ किया वहां, सर्व अवस्था में क्या कहा, यह सर्व प्रकार से किसी भी प्रकार से प्रकाशमान नहीं है, प्रकाशमान ही है। द्योतमानम प्रकाशित ही है, इसका भावार्थ करते हैं। भावार्थ ऐसा है, सर्व प्रकार प्रकाशमान है, इसका भावार्थ ऐसा है कि अनुभव गोचर होने पर कहीं भ्रांति नहीं रहती। ये कौन कहता है? जिसने देखा, अनुभव किया, वो कहता है तो उसको कहीं भ्रांति नहीं रहती। थोड़ी तो भ्रांति रहती होगी कि हमारा मोक्ष कभी होगा, मोक्ष होगा कि नहीं होगा, होगा तो कभी होगा, फिर इस भव के बाद हमारा कौन सा भव होगा, कहीं हम नरक में तो नहीं चले जाएंगे, कहीं हम त्रिंच में तो पशु प्राणी में तो नहीं चले जाएंगे, पशु पक्षी हो जाएंगे तो क्या होगा, ऐसी कोई शंका कोई भ्रांति मोक्ष मार्गी जीव को कभी होती
नहीं।
अनुभव गोचर होने से किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहती, भ्रमणा भी रहे और अनुभव भी रहे, दोनों बात साथ में रहती नहीं। चलित नगर आनंद का अनुभव, स्वरूप का अनुभव, मैंने चैतन्य का अनुभव, शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव रहे और भ्रांति भी रहे, दो बात साथ में नहीं रहती। कहीं किसी को प्रश्न हो, कोई प्रश्न कर सकता है, किसी को प्रश्न होता है कि जीव तो शुद्ध स्वरूप कहा, जीव तो शुद्ध स्वरूप कहा और ऐसा ही है, शुद्ध स्वरूप कहा और ऐसा ही है, परंतु राग द्वेष मोह रूप परिणामों के अथवा सुख दुख आदि रूप परिणामों को कौन करता है और कौन भोगता है? आप कहते हैं कि जीव तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य मैंने आत्मा, आत्मा मैंने शुद्ध चैतन्य। तो हमको ये प्रश्न होता है कि ये राग द्वेष मोह रूप भाव होते हैं किसको होते हैं, अथवा जीव को परिणाम में कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख ऐसा अनुभव होता है। ये परिणाम कौन करता है, कौन भोगता है? रागादि को करता कौन है, हरक्षोभ को भोगता कौन है? ऐसा एक प्रश्न उठाया। उत्तर ऐसा कि ये परिणाम तो जीव ही करता है, रागादि भाव तो जीव ही करता है, और जीव ही इसके फल स्वरूप सुख दुख को भोगता है। परंतु यह परिणाम विभाव रूप है, उपाधि रूप है, यह परिणाम विभाव रूप है, उपाधि रूप है। इसका मतलब यह है कि अपने नील स्वरूप को अनुभव करने पर, नील स्वरूप को विचार करने पर, मूल स्वरूप को देखने पर, ये जीव का मूल स्वरूप नहीं है ऐसा देखने में आता है। क्या बात कही, पद्धति बहुत सुंदर है राजमल की। राजमल जी कहते हैं कि तुझे रागादी भाव होता है, ठीक है मैं जानता हूं, तो सुख दुख को भोगता है वो भी ठीक है, पता है मुझे। लेकिन और एक बात है इसमें कि तेरा जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उसका विचार करने पर, उसको अवलोकन करने पर, उसको अपने रूप में, अपने स्वरूप है ऐसे, अपने स्वरूप में है ऐसा देखने पर, है भी अपना स्वरूप ऐसा देखने पर, ये भाव प्रगट विभाव रूप बी जाति दूसरा जाति वाला, मेरे जाति वाला नहीं, और उपाधि रूप दिखेगा कि जीव को एक उपाधि है, दुख है सो उपाधि है, रागादि भाव है सो उपाधि है, मेरा मूल स्वरूप ऐसा नहीं है। यही बात आगे आचार्य महाराज कहते हैं कि यत्र हमें बद्धस्पृष्ट भाव आदय प्रतिष्ठान नहीं विदती, जो शुद्धात्म स्वरूप में ऊपरी तरंग सबसे छिल्ला ली आखिरी बात लिया है, जो शुद्धात्म स्वरूप में विद्यमान अशुद्ध रागादि भाव बद्ध भाव और स्पष्ट मैंने परस्पर पिंड रूप एक क्षेत्रावगा कर्मोदय, कर्म का संबंध आदि शब्द से अन्य भाव, अनियत भाव, विशेष भाव, संयुक्त भाव इत्यादि जो विभाव परिणाम है, वे समस्त भाव शुद्ध स्वरूप में शोभा नहीं धारण करता। प्रतिष्ठा का अर्थ यहाँ शोभा लिया है, प्रतिष्ठान नहीं विदधति, शोभा नहीं देते, अपना जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप उसमें उसकी कोई शोभा नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, कोई प्रतिष्ठा इसकी नहीं है। नर नारक तिर्यंच और देव पर्याय रूप भाव के नाम अन्य भाव है, विभाव भाव के परिणाम दिए ना आदि, आदि में कौन कौन से भाव हैं? तो नर नारक तिर्यंच और देव पर्याय वो अन्य भाव है, असंख्यात प्रदेश संबंधी संकोच विस्तार रूप परिणाम, कभी मोटा क्षेत्र है, कभी छोटा क्षेत्र है, कभी हाथी बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी चींटी बनता है जीव, ऐसे ऐसे अनियत भाव और दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप भेद, भेद कथन का नाम विशेष भाव गुण भेद, ऐसे रागादि उपाधि सहित का नाम संयुक्त भाव है। भावार्थ ऐसा है कि बद स्पृष्ट अन्य अनियत विशेष और संयुक्त ऐसे जो विभाव परिणाम है वे समस्त संसार अवस्था युक्त जीव के हैं, संसार अवस्था युक्त जीव के हैं, शुद्ध जीव स्वरूप अनुभव करने पर जीव के नहीं है, जीव के होने पर भी जीव के नहीं है, ऐसा ये पद्धति इनकी बहुत सुंदर है। जीव के हैं फिर भी जीव के
नहीं है,
नहीं है। जैसे कोई परिवार में कोई दुश्मन हो जाता है, वो शर्मिम आदि से या कोई प्रथम वस्तु एक जगह खाने पीने में इकट्ठे हो जाते हैं, तो कहते हैं जी तो आप आपके परिवार के हैं, आपके सगे हैं, कहाँ हैं तो हमारे कजिन हैं, हमारे कुटुंब परिवार के भाई लगते हैं, भाई होते हुए भी भाई
नहीं
है, क्योंकि वो भाई का काम नहीं करता, वो चाहता है कि कैसे वो खत्म हो जाए, तो भाई होने पर भाई नहीं है, वैसे जीव के अवस्था में होने पर जीव के
नहीं है।
जैसे सूजन आता है, सूजन आने से अच्छा दिखता है, मुंह अच्छा दिखता है, भरा भरा, पहले उसमें खड्डे खड्डे दिखे, सूजन होने से अच्छा लगे, तो उसको क्या ठीक है, वो शरीर की तो अवस्था है और अच्छी भी दिखती है, डॉक्टर कहेगा कि भाई तेरा जो किडनी है वो खराब हो गया है, क्या हुआ है, किडनी फेल हो जाएगा, अगर उसको ठीक नहीं करोगे तो मर जाओगे। तो ये शरीर की अवस्था होने पर भी शरीर के प्रतिकूल है, शरीर के दुश्मन है, शरीर को नाश करने वाले है, तो शरीर की होने पर भी शरीर की
नहीं है,
ये अभिप्राय है। ऐसे विभाव परिणाम समस्त संसार अवस्था युक्त जीव के हैं, शुद्ध जीव स्वरूप अनुभव होने पर जीव के नहीं है। कैसे है ये विभाव भाव, स्फुटम प्रकट रूप से एत्योपि उपजता है, पैदा होता है, पैदा होता हुआ विद्यमान है, ऐसा नहीं है कोई कल्पना है, जैसे वेदांत कहते हैं ब्रह्मणा है, पैदा होता हुआ विद्यमान है, फिर भी ऊपरी तरंतः ऊपर ऊपर ही रहता है, ऊपर ऊपर ही रहता है, इसका भावार्थ ऐसा है कि यही खुद का भाव निकालते हैं, इसका भावार्थ एक एक पद का वो भावार्थ करते हैं, भावार्थ में टीका करते हैं, खंडान्वयी सहित उसकी टीका है, भावार्थ ऐसे हैं कि जीव के ज्ञान गुण त्रिकाल गोचर है, उसी प्रकार रागादि विभाव भाव जीव वस्तु में त्रिकाल गोचर नहीं है, जैसा स्वभाव त्रिकाली है वैसा रागादि भाव त्रिकाली नहीं है, यद्यपि संसार अवस्था में विद्यमान है फिर भी मोक्ष अवस्था में सर्वथा नहीं होते, नहीं रहते, उनका नाश हो जाता है, इसलिए ऐसा निश्चय है कि रागादि जीव स्वरूप नहीं, यानी रागादि मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप नहीं तो ये कोई ऊपर ऊपर चलता है, ऊपर ऊपर आता है, ऊपर ऊपर जाता है, पैदा होता है, कहीं ऊपर ऊपर होता है, फिर चला जाता है, ऊपर ऊपर होता है और चला जाता है, ऐसा ये ऊपरीकरण के 11वां कलश जो है कलश टीका का बहुत अध्यात्म प्रधान टीका है, राजमल जी का। ऊपर तैरते हैं परंतु उसमें सचमुच स्थान नहीं पाते, शक्ति तो शुद्ध ही है, आत्मा की जो शक्ति है वो तो
है।
है। सुधे मैंने उसमें तो कोई रागादि मलिनता नहीं है। व्यक्ति में अशुद्धता आई है, शक्ति में अशुद्धता तो कभी आती नहीं, मलिनता आती नहीं, लेकिन व्यक्त अवस्था में मलिनता आई है। और वो भी मलिनता कब आई कि अपना शुद्ध शक्ति को भूली भूले तब आई। अगर उसको नहीं भूलते, उसके भान में रहते हैं, तो ये व्यक्ति में भी ये शुद्धता उत्पन्न नहीं हो सकती। व्यक्ति मैंने पर्याय, शक्ति मैंने गुण, व्यक्ति मैंने अवस्था, व्यक्त क्रिया, इसको व्यक्ति कहते हैं। वो इकारांत स्त्रीलिंग है, वो क्रियावाचक है। परिणति, व्यक्ति, व्यक्ति, ये सब भाषा में कुछ सब इकारांत लगते हैं। तो व्यक्त क्रिया को परिणाम, परिणाम रूप क्रिया, व्यक्त परिणाम रूप क्रिया को व्यक्ति कहते हैं। नाम की परिणमित क्रिया को ज्ञप्ति कहते हैं। परिणाम की चलती क्रिया को परिणति कहते हैं।
मुझे पूरी पर्याय मां
जो ऐसे देखते हैं, जिसको ऐसा दिखा दिखने में आता है कि अशुद्धता ऊपर ऊपर है, तो उसका ज्ञान तो शुद्ध है। किसमें दिखने में आया? शुद्ध ज्ञान में दिखने में आया। कि जो शुद्ध ज्ञान है, उस शुद्ध ज्ञान में तो रागादि भाव नहीं
है।
मेरे में तो अगाध ज्ञान पानी है। कैसा है?
अगाध ज्ञान पानी,
अगाध ज्ञान पानी। तो अगाध ज्ञान पानी है, अगाध ज्ञान है, उसमें अशुद्धता ऊपर ऊपर तीरती है। जैसे वो पानी में ये होता है ना, बबल्स होते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में बबल्स को, क्या बुदबुदे, बुदबुदे कहते हैं। तो ये बुदबुदे की क्या हालत है? है तो पानी में, पानी की अवस्था, थोड़ी हवा भरती भर जाती है तो वो बुदबुदे हो जाते हैं। बड़बड़िया, आपने गुजराती में बड़बड़िया कहिए, पानी ना बड़बड़िया, हवा भराए से। आयु कितनी उसकी बुदबुदे की? आयु कितनी? पैदा होते ही कुछ काल में खत्म हो जाते हैं, ऊपर ऊपर तीरते हैं। पानी में पानी की अवस्था होते हुए भी ऊपर ऊपर तीरते हैं। पूरी की पूरी अवस्था है क्या ये पानी की? यानी पानी के कुछ अंश में ऊपर ऊपर तीरते हैं और खत्म हो जाते हैं। बहुत क्षणिक है, उसकी लंबी आयु होती नहीं। ऐसे ही विभाव भाव की लंबी आयु नहीं होती। देखिए, संसारी जीव को कोई राग अच्छा लगता है, बहुत सुहाता हो कि ये भाव, ये राग हमको बहुत अच्छा लगता है, फिर भी वो नहीं टिकता, बह जाता है, चला जाता है, बुदबुदी की तरह खत्म हो जाता है। रखने के लिए जीव चाहे कि ये भाव हमेशा रहे, तो भी रहता नहीं। ये जीव की अवस्था के बुदबुदे हैं, रहने वाले नहीं है। वो तो कल्पना किया है कि वो अच्छा है, लेकिन उनकी आयु लंबी नहीं होती। क्षणिक आयु लेकर के वो पैदा होते हैं, वैसे ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे पानी की बुदबुदे ही समझो, शास्त्र ने इसकी उपमा दी है। विभाव भाव को पानी के बुदबुदा करके उपमा दी है कि पानी का बड़बड़िया है, मिट जाएगा क्षण में, उसमें तू रुचि रखता है, उसको पकड़ने के लिए आतो रहता है, उसमें रहने के लिए चाहता है, लेकिन उससे दुख होगा, कोई सुख होगा नहीं, वो तो चले जाएंगे, तुझे तो आकुलता ही आकुलता रहेगी, वो कोई रहने वाले परिणाम नहीं है। ऐसे अध्यात्म और द्रव्यानुयोग का मेल किया है। द्रव गुण तो शुद्ध है, अवस्था के कुछ एक अंश में रागादि विभाव भाव ऊपर ऊपर तीरते हैं। अपने स्वरूप को देखने पर वो अपने मालूम पड़ते हैं, विभाव हैं, परक हैं, उसको उसके प्रति प्रीति प्रेम करने लायक नहीं है, ऐसा स्पष्टतया मालूम होता है। ऐसे 724 में इस कलश पर से बात चली है, समय सार के 11वां नंबर के कलश पर ये बात चली होगी, पांचन में यहाँ पर आई है। 525 में जो है वो मुमुक्षु के लिए अच्छा प्रयोजन भूत विषय है। मुमुक्षु जी में भी जो तत्वज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रवेश हुआ है और अच्छी तरह तत्वज्ञान का अभ्यास करता है और विपरीत धारणा नहीं करता है, ऐसे जीव को भी अनुभव की प्राप्ति, आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, उस पर प्रश्न उठाया। ऐसा भी होता है, ऐसा भी दिखने में आते हैं कि बहुत से जीव, जैसे गुरुदेव की कृपा से अभी हजारों लोग संप्रदाय से भी अलग होकर के ये तत्व ज्ञान के अभ्यास में जुड़े कि यही ठीक रास्ता है, फिर भी कहीं लोग अटक जाते हैं, उसको अनुभव नहीं होते, मोक्ष मार्ग में नहीं आ सकते, क्या कारण है इसका? ये प्रश्न जो है तो पात्रता का विषय का प्रश्न है, इसलिए महत्वपूर्ण है, इस पर कल चलाएंगे।
जय हो जय हो।